चंद्रभागा नदी की
जय।
श्री विठ्ठल रखमाई की
जय।
श्री पंडरपुर धाम की
जय।
निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि पंडरपुर के इस दिव्य क्षेत्र में, दिव्य धाम में आपके बीच में बैठने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत ही आपका सबका आभारी हूँ, विशेष रूप से क्योंकि मैंने कुछ सेवा नहीं किया है, मैं तो केवल आपके बीच में अभी आके बैठा हूँ। आप लोगों ने सेवा किया है भगवान के धाम में आकर, आपने अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी भावना, अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में रखा है सेवा के रूप में। इसलिए भगवान आप पर अनंत कृपा करेंगे, अपने धाम का दर्शन देंगे, अपने धाम का महत्व प्रकट करेंगे आपके सामने, अपने आप को प्रकट करेंगे, अपने धाम के महिमा को प्रकट करेंगे, महान स्थानों को प्रकट करेंगे। ये भगवान की इच्छा है, तो इसलिए मैं दोबारा आप सबका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इतना बहुत सुंदर वातावरण है, तीन वस्तुएं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है पंडरपुर क्षेत्र स्वयं, द प्लेस। दूसरा है पंडरपुर के धामी भगवान श्री विट्ठल जी, श्री पंडरीनाथ जी, और तीसरी है चंद्रभागा नदी। और स्कंद पुराण में लिखा है कि ये तीनों वस्तु एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, तीनों वस्तुएं एक ही हैं, भगवान का ही वो प्रकट है। बस धाम में बैठे हैं वो भगवान है, नदी को देखेंगे वो भी भगवान है, और स्वयं जो भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है वो भी भगवान है। अभी हम लोग चंद्रभागा नदी के पूर्व तट पर बैठे हुए हैं और चंद्रभागा के पश्चिम तट पर पंडरपुर के भगवान का मंदिर है, पंडरीनाथ जी महाराज, विट्ठल जी देव, उनका मंदिर पूर्व दिशा में। और ये नदी जो है ये यहाँ इस क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम है विष्णुपद, वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, जहां पर हम लोग भी जाएंगे गोपालपुर, तो थोड़ा सा आगे है, वहां तक ये नदी जो है ये पूर्व दिशा में आती है, पूर्वाभिमुख कहते हैं उसको, और विष्णुपद के बाद में वो दक्षिणाभिमुख बन जाती है, दक्षिण दिशा में आने लगती है और पूरी तरह से गोल आकार में आती है, चंद्राकार में आती है। इसलिए उसका पहला नाम है, जब वो सह्याद्री नदी, सह्याद्री पर्वत से निकलती है 4300 फुट के ऊपर से वो उसका उगम होता है, उसका नाम है भीमा, भीमरथी, भीवरी, ऐसे कई नाम है उसके। और फिर आगे वहां से आने के पहले इंद्राणी नदी का उनका मिलन होता है, यहां पर देहू का स्थान है, वहां से आगे जाकर इंद्राणी का इनका मिलन होता है, और फिर ये भीमा नदी जो है वहां से आगे बढ़ती है और पूना तक आती है, पूना से आगे जाकर फिर और कई नदियां उन्हें मिलती है, फिर विष्णुपद पे आते हैं, विष्णुपद से वो एकदम गोलाकार घूम जाती है, वहां से उसका नाम पड़ा है चंद्रभागा। जैसे ब्रज में भी ऐसा ही है, यमुना जी आती हैं तो जब प्रवेश करते हैं मथुरा क्षेत्र से, आते हैं जमुनोत्री से, 14,000 फुट जमुनोत्री हिमालय के अंदर है, वहां से वो आती है। तो जब मथुरा में आती है तो मथुरा से आकर पूरे वृंदावन को गोल चक्कर निकालती है, कम्प्लीट, जैसे आंख होता है ना उसमें काजल होता है, वो पूरा आंख को चारों तरफ घेर लेता है, उसके परिघ में, उसके सर्कमफेरेंस में उसको कवर कर लेता है। वैसे ही वो पूरी जमुना जी ऐसे आती है एक तरफ से गोल घूमकर, फिर दोबारा वैसे चले जाती है, और फिर आगे बढ़ के फिर इलाहाबाद होते हुए फिर आगे चले जाती है। उसी तरह से वो भाग जो जमुना जी का है, वो जो ब्रज के अंदर है, वो अति अति पवित्र माना गया है। उसी तरह से भीमा नदी तो पवित्र है ही, वैसे देखा जाए तो सारी नदियां पवित्र है, जो भगवान की इच्छा से पहाड़ से न जाने कहां से उपलब्ध होती है। तो देख सकता है कोई नहीं, एक जगह तक आप जा सकते हो, जैसे गंगा जी का जो उगम है, आप गोमुख तक पहुंच सकते हो, गोमुख के आगे कोई जा सकता नहीं, और कहां से पानी आ रहा है किसी को समझता नहीं, क्योंकि ये दिव्य है, सब भगवान के धाम से आता है। चंद्रभागा नदी की कहानी भी ऐसी है कि एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरा, त्रिपुरासुर, आपने सुना उसका नाम, भगवान का नाम तो एक शंकर जी का नाम पड़ा है त्रिपुरारी, तो वो त्रिपुरा राक्षस के नाम पर पड़ा है। तो त्रिपुरा राक्षस ने देवताओं को बहुत हाहाकार कर दिया था पूरा कंप्लीट, तो देवता सब लोग मिलकर शिव जी के पास गए और शिव जी को उन्होंने याचना किया, प्लीज हमको जरा बचाओ इससे, बहुत कष्ट उत्पन्न किया है, उत्पाद उत्पन्न किया है। तो फिर शिव जी महाराज आते हैं नंदी को लेकर, और एक पैर जमीन पर रखते हुए, एक पैर नंदी पर रखते हुए इस राक्षस का बहुत घनघोर युद्ध करते हैं। त्रिपुरारी का एक विशेषता थी कि एक एक ऐसे पुर के रूप में था वो, जिसके तीन पुर थे, तीन अलग अलग पुर आकाश में थे, और आप समझते हैं राक्षस मतलब कोई व्यक्ति होगा, हमेशा ऐसे सिंह होंगे, इसके बड़े दांत होंगे, काला रंग होगा, लाल रंग की आंखें होंगी, लाल रंग के बाल होंगे, और बहुत विशाल पर्वत समान उसका आकार होगा, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन राक्षसों के अंदर बहुत सिद्धियां होती है, तो ये त्रिपुरा राक्षस का ऐसा विशेषता थी कि वो अदृश्य रूप में रहा करता था, एक घर के मतलब एक पुर यानी शहर के रूप में रहता था, और वो शहर भी था वो तीन रूप में था, तीन विभाग में था, और वो आकाश में था, और वहां से केवल बाण निकलते थे, कोई कौन छोड़ रहा है बाण को दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसा भयंकर राक्षस था वो, अदृश्य रूप में सब देवताओं को त्रस्त कर दिया था उसने। तो इस त्रिपुरारी जो त्रिपुर के रूप में अवकाश में उपस्थित था, उसको भयंकर युद्ध में शंकर भगवान ने परास्त कर दिया और उसको मार दिया। और जब ये युद्ध हो रहा था तो शंकर भगवान के शरीर से जो दिव्य बिंदु निकले, जिसको दुनिया में हम लोग पसीना कहते हैं, लेकिन उसमें दिव्य भाषा में श्वेत बिंदु कहते हैं उसको, पसीने को बदबू आती है, पसीना मल की तरह माना गया है, गंदा माना गया, उसको अपवित्र माना गया, लेकिन श्वेत बिंदु जो पवित्र होते हैं, सुगंधमय होते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, ये भगवान के शरीर से, गोपियों के शरीर से, शंकर भगवान के शरीर से निकलता है। तो जो श्वेत बिंदु शंकर भगवान के दिव्य शरीर से निकले और गिरे, वो इकट्ठा होकर उन्होंने उस उन सब बिंदुओं ने नदी का रूप धारण कर दिया, और वो नदी जो है वो है चंद्रभागा, वो भीमा नदी। तो जब ये पैदा हुई मतलब इकट्ठा हुई, तो वो अवकाश में थी ना, बहुत पृथ्वी पर नहीं थी वो, बहुत भयंकर अवकाश में युद्ध हुआ था। तो अवकाश से जब वो सीधे पंडरपुर क्षेत्र में आई, मतलब सह्याद्री में पहले आई, वहां से प्रकट होकर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब आई, तो बहुत बड़ा बड़ा आवाज करते हुए आ रही थी। जब यहां तक आई तब तो सब लोग परेशान हो गए, इतना भयंकर गर्जना, इतना भयंकर आवाज, उसको डर लगने लगा, और अच्छा भी नहीं लगने लगा कि ऐसे इतना भयंकर भय पैदा हो रहा है। तो सब लोगों ने मिलकर शंकर भगवान की, सॉरी विष्णु भगवान की, पंडरपुर के पंडरनाथ भगवान की आराधना की कि हमको डर लग रहा है, पता नहीं पंडरपुर पर कौन संकट आ रहा है। तो पंडरपुर भगवान ने नदी को कहा कि आप जरूर जोरदार वेग से यहां पर आना, लेकिन ध्वनि मत करना, डोंट मेक एनी साउंड, कोई शोर मत करना, मेरे भक्त लोग डर रहे हैं, भगवान की तो दया हुई। तो नदी ने उतने ही वेग से आना चालू रखा, लेकिन एकदम आवाज शांत हो गया पर, और फिर वो जिस तरह से मैंने आपको वर्णन किया वैसे वहां से आई चंद्राकार रूप में होकर आगे चली जाती है, आंध्र प्रदेश में चली जाती है। आंध्र प्रदेश रायचूर जगह पर कृष्णा नदी का उनका मिलन होता है, फिर आगे समुद्र में उसका मिलन हो जाता है। ये चंद्रभागा के उगम का कहानी है। और भी इसके कहानी है कि चंद्र ने, चंद्र मतलब सोमदेव, जो चंद्र होते हैं आकाश में देखते हैं ना, तो वो तो एक प्लैनेट है लेकिन उसके देवता है सोमदेव, चंद्र देवता। उस चंद्र देवता ने एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है, उसकी पत्नी तारा है, उसको भ्रष्ट किया, उसका अपराध किया। तो बृहस्पति जी बहुत गुस्सा हो गए, क्रोध किया उन्होंने, बहुत उनको श्राप दिया उसने कि आपको राज यक्ष्मा होगा, उसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षय रोग कहते हैं उसको। तो चंद्र को बहुत डर लगा, मतलब पश्चाताप हो गया। तो बृहस्पति की शरण ली उन्होंने, उन्होंने कहा बृहस्पति महाराज आप मुझे माफ कीजिए, सब मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए, मैं आपके चरणों में शरण आता हूँ, मेरे हाथ से गलती हुई। हरे कृष्णा, टेलीफोन कॉल्स अभी इसके बाहर। तो क्या कह रहा था मैं बताओ, बृहस्पति को उन्होंने क्षमा याचना की, पश्चाताप किया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अभी चंद्रभागा में जाके स्नान करो, और चंद्रभागा में स्नान करने के बाद आपको ऐसा शक्ति मिलेगा, सूर्यदेव की आराधना करो, चंद्रदेव चंद्रभागा में स्नान करने के बाद सूर्य की पूजा करो, फिर आपको ऐसा शक्ति प्राप्त होगा कि आप महीने के 15 दिन छोटे साइज से आपकी वृद्धि होगी और बड़े हो जाएंगे आप, लेकिन जरा श्राप जो है वो पूर्णता नष्ट नहीं हो सकता है, उसका परिणाम भी रहेगा क्योंकि हमने आपको श्राप दिया है, तो भी सत्य रहेगा। इसलिए 15 दिन आप क्षय रोग से पीड़ित रहेंगे। आप मतलब क्षय का टीबी का बीमार कैसा होता है, पतला 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 होते जाता है, एक दिन अदृश्य हो जाता है मतलब मौत के मुंह चला जाता है। तो वैसे आप पूर्णिमा के आकार से छोटे 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 होकर एक दिन अदृश्य हो जाएगा अमावस्या के रूप में, फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक फिर सूर्यदेव की कृपा से आपकी वृद्धि होगी। फिर यहाँ पर चंद्रदेव आए हैं, उन्होंने स्नान किया है, उसलिए और भी एक नाम कारण है उसका, इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा, चंद्र ने अपना सहभाग दिया है स्नान करके, सूर्यदेव की आराधना की है, फिर उनको वो शक्ति प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से अमावस्या के बाद 15 दिन बढ़ने का जो वरदान है उनको प्राप्त हुआ। और एक कहानी ऐसी है कि बहुत सारी कहानी है, आपको नींद नहीं आ रही ना, नींद आएगी तो हमारा भी जो ऐसा है ना उत्साह जो है ना वो धीरे धीरे क्षय रोग की तरह कम 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 होती जाएगा और नष्ट भी हो सकता है उसके बाद में। इसलिए हमारा आप कैसे ना, सूर्यदेव ने जो वरदान दिया था ना उस तरह से आप रहना, आपका उत्साह सूर्यदेव की तरह हमारे उत्साह को बढ़ाते जाएगा पूर्णिमा के चांद की तरह। तो एक दिन आप जानते हैं, सुना होगा कहानी आपने, कि इंद्रदेव ने जाकर गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या देवी, उसका भोग किया। इंद्रदेव ने देखा कि गौतम ऋषि तपस्या करने के लिए गए हैं, बहुत देर के बाद में आएंगे, तो उन्होंने गौतम ऋषि का ही जो धारण कर दिया, घर में प्रवेश कर दिया। तो पत्नी को लगा अपने पति हैं, तो उन्होंने उसका भोग किया, और भोग लेकर जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तब गौतम ऋषि का, असली गौतम ऋषि का आगमन हुआ। तो पत्नी बहुत अचंभित हो गया, अरे ये भी गौतम ऋषि, ये भी गौतम ऋषि, सही कौन है? तो जो बाद में आए गौतम ऋषि, उन्होंने श्राप दिया, और श्राप देते ही तुरंत इंद्र अपने मूल रूप में आ गए और शर्मा कर भागने लगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओगी, पाषाण बन जाओगी, और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छेद होंगे आंखों की तरह, हमारे शरीर में 2 आंखें ना, 2 छेद है यहाँ पर, उसमें हमारी आंख छुपी हुई है, बंद करेंगे तो छेद बंद हो जाएगा, खोलेंगे तो छेद खुल जाता है। तो वैसे 1000 आंखें शरीर में बन गई उसकी। तो इंद्र को भी पश्चाताप हुआ, तो इंद्र जो विष्णु के पास गए, हमको सब ऐसा सब करना नहीं है, याद रखना, पहले अपराध करना, फिर जाना इसके उसके पास क्षमा मांगना। अपराध मैंने बताया ना पहले सुबह के प्रवचन में, अपराध करना ही नहीं चाहिए, पहले अपराध करो, फिर अपराध का उपाय ढूंढो, इधर जाओ उधर जाओ, फिर पश्चाताप करो, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। देवता लोग इसमें जरा गड़बड़ कर देते हैं, देवता लोगों के पास इतनी भोग की व्यवस्था है, सब लोग भगवान के अपने देवताओं के लोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोक में, जहां तपस्या करते हैं, यहाँ यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में निवास मिलेगी, स्वर्ग में अप्सराओं का आनंद मिलेगा, भोग मिलेगा, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे देखने के लिए, जो व्यंजन समाप्त ही खराब ही नहीं कभी होते हैं, जो फूल कभी मुरझाते नहीं है। और देवताओं के राज्य में क्या मालूम है आपको, वहां पर शरीर के अंदर बढ़िया आते हैं और मूत्राशय नहीं होता है, उस शरीर से मलमूत्र निकलता ही नहीं है, उस शरीर से पसीना निकलता होगा तो भी उसका बहुत खुशबू आती है, कान से नाक से मुंह से कोई बदबू नहीं आती है, कोई गंदगी नहीं होती है, ऐसा शरीर में सब जाने की कामना करते हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ होता है वहां जाने के बाद में। इतना सब सुविधा मिलेगा ना भोग करने का, तो लोग फिर अपने मति से भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत सारा भोग का सुविधा मिलेगा तो फिर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर और गरीब इसमें से कौन सा अच्छा आदमी होता है बताओ?
गरीब
आदमी नम्र होता है, शांत होता है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आदमी अमीर बनता है तो उसके हाथ में धन दौलत सुविधा अपॉर्चुनिटीज मौका आ जाता है, तो फिर वो गलत काम करने लगता है। तो ऐश्वर्य संपत्ति दौलत धन सुंदरता शक्ति इन सबसे हमको अहंकार होता है, उससे हम पाप करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। देवता लोगों का भी ऐसा है। अब इंद्र जैसे देवताओं के राजा जो है वो भी इतना गलत काम करते हैं, साधु के ऋषि के पत्नी को पर अपनी नजर डालते हैं और उसको चीटिंग करके उसका भोग करते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है, उसको भी शाप हो जाता है उसका, वो पत्थर बन जाती है। भगवान रामचंद्र फिर उसका उद्धार करते हैं, हाँ पैर रखकर उसको अहिल्या देवी को उद्धार करते हैं और सीधे भगवान के धाम में भेज देते हैं। वो अलग बात है, भगवान की कृपा है वो, क्योंकि वो निष्पाप थी, लेकिन तब कष्ट तो उसको भी हुआ ना। और चंद्र देवता ने ऐसे ही किया, अपने गुरु जो है देवताओं के बृहस्पति उसकी तारा देवी जाके भ्रष्ट किया उसको, फिर पश्चाताप किया, शाप मिलने का दंड मिलने का डर लगा तो फिर दम्र हो गए। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है, पर स्त्री पर पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए, पर स्त्री पुरुष होगा और नशा नहीं होना चाहिए, मांसाहार किसी की जीव की हत्या का नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, नो हत्या, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये चार पाप के महास्तंभ है, इससे आदमी तुरंत सत्वगुण में आ जाता है इसको छोड़ देने से, और फिर भगवान का नाम लेना है, तो ये शुद्ध जीवन का बेसिस है, नींव है। फिर वो गरीब होने की जरूरत नहीं और अमीर होने की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसको। पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, पढ़ा लिखा होगा या धनवान होगा शक्तिमान होगा गरीब होगा कोई भी अवस्था में होगा, फिर भी ये चार नियम पालन करके वो शुद्ध बन सकता है। भगवान आपको उस नजर से देखते नहीं है, अरे ये तो गरीब है और ये अमीर है, अच्छा है, बहुत ही बहुत पढ़ा लिखा है, इसको मैं ज्यादा कृपा करूंगा, ऐसा नहीं करते भगवान। जो भक्ति करते हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं। तो ये चार नियम पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ये हर जीव के लिए आवश्यक है, खास करके मनुष्य जीव के लिए। अभी हमने सुना कुछ लोग एक माला कर रहे हैं, कुछ दो माला कर रहे हैं, चार माला कर रहे हैं। ये जीवन भगवान का नाम लेने के लिए दिया है हमको, शुद्ध जीवन चलाने के लिए, शुद्धता को अपनाने के लिए, शुद्ध स्तर पर पहुंचने के लिए ये शरीर हमको भगवान ने दिया है। इसी को लेकर हम धाम में आते हैं, यहां पर सेवा करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं कि हमको इसी शरीर में ऐसी व्यवस्था दे दी है भगवान ने, उसका लाभ लेकर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए हम लोग आते हैं। और वो करना ही मनुष्य जीवन का सही उपयोग है, और ये नहीं करेंगे तो मनुष्य बन के फायदा क्या है। हाँ, सैनिक बनकर अगर युद्ध नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, सैनिक बनकर उपयोग क्या है उसका। पुलिस बनकर ड्रेस पहनेंगे खाली और खुद चोरी करेंगे तो पुलिस बन के फायदा क्या है। वैसे मनुष्य शरीर जो है ये ऐसा वस्त्र है जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए देवताओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए हमको। देवताओं के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी बुद्धि है, बड़ी स्मृति है, उनको कोई गंदगी नहीं शरीर में उनके, तो वो भगवान को बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भोग ऐसा होता है ना, भोग अच्छे अच्छे लोगों का भी दिल जो है दिमाग खराब कर देता है। तो ये बात कहां से निकली थी बताओ? देवताओं के ऊपर से। तो ऐसे ही चंद्र और इंद्र भगवान ने यहां पर गड़बड़ किया, तो इंद्र को जब शाप मिला कि वो 1000 छिद्र होंगे शरीर में उसके, आप सोच सकते हैं क्या, आपके शरीर में 2 आंखें हैं, अच्छी दिखती है जरा, 2 ना 4 हो गए तो ऐसे दिखेगी, इधर एक इधर एक इधर एक, इधर गाल पे एक, इधर एक, इधर नीचे गले में, इधर हाथ पे एक, कैसा दिखेगा, ऐसे 1000 आंखें थी उसके शरीर में। तो कुरूप तो हो गया वो, उल्टा एम्बेरसमेंट, कितना संकोच है उसके लिए, सब देखेंगे ना, देखो देखो इतनी आंखें क्यों है, ये गड़बड़ किया था ना उसने, उसकी वजह से ऐसा संकोच भी होगा ना, तो बहुत दुखी हो गए वो। तो गए विष्णु के पास में रोते रोते, तो विष्णु ने उनको जरा क्या कहते हैं उसको डांट फटकार दिया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोह दंड देता हूं, क्या लोह दंड, मतलब लोह की गदा। अभी गदा जो है पानी में डूबती है ना हमेशा, किधर भी जाएगी। बोले ये गदा जिस पानी में तैरेगी उसमें स्नान करने से आपकी सारे आंखें नष्ट हो जाएंगे। तो वो गदा को लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड में गए, सब नदी में सब तालाब में स्नान किया, कहीं भी वो तैरी नहीं, सब जगह डूबती गई। और यहां पर आए चंद्रभागा में, यहां पर डाला उसको तो वो तैरने लगी, तुरंत कपड़ा उतार के स्नान किया और वो सब छिद्रों से मुक्त हो गया। ये भी चंद्रभागा की कथा है। तो उसको एक जगह नाम भी दिया गया है इस क्षेत्र को, जिसको नींद आ रही है वो कृपा करके खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो लोहदंड तीर्थ नाम दिया गया उसको, इस जगह को। सर कई नाम है, मैं आपको धीरे धीरे सब कहानी बताऊंगा। अगर आपकी आंखों की पलके ऊपर रही तो बहुत सारी कथाएं बाहर आएंगी मेरे मुख से, अगर आपकी आंखों की पलके नीचे गई तो कथा के द्वार बंद हो जाएंगे, भाभी समाप्त हो जाएंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
मैं जानता हूँ आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, कई दिन से असुविधा में रहकर सेवा किया है, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। लेकिन फिर भी ये कथा में से आपका पंडरपुर के बारे में जो अनुभूति है वो बढ़ जाएगी। आपके नदी के बारे में देखने की दृष्टि बदल जाएगी, आपके नदी के बारे में सोच समझ बदल जाएगी आपकी, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब मैं पढ़कर उसका अध्ययन कर रहा था तो मैं भी पहले वहां पर बहुत बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जब अध्ययन करके आया तो मेरे देखने की दृष्टि बदल गई है। तो इसलिए एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धाम में कैसे रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, वो एक टीवी स्टेशन पर रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू दे रहे थे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पर जी टीवी का वाइब्रेशन है क्या, है कि नहीं है? और आज तक का है, स्टार टीवी का है, एफएम चैनल का भी वाइब्रेशन है क्या यहाँ पर, है कि नहीं बताओ? यस और नो?
यस यस।
नो कितना लोगों का कहना है? मेरा भी आज नो में है, मेरा हाथ नो में है, आपका है? सब लोगों का यस, कितना लोगों का हाथ है? आप लोग सब सही हो। इसका कारण यह है, ये सब वाइब्रेशन जो है ना, जी टीवी, स्टार टीवी, एफएम रेडियो चैनल और पता नहीं कितने चैनल आजकल 250, 250, 300, 1000 चैनल होते हैं, सबके वाइब्रेशन यहाँ पर उपलब्ध है। कमी किसकी है? टीवी सेट की। टीवी सेट लेके आएंगे ना, उसको ट्यून करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको दिखाई पड़ेगा। स्टार चैनल पे जाके लगाएंगे तो स्टार का सारा चित्रपट आपको दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा ना पड़ेगा। एफएम 93.4 अगर देखना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसको 93.4 पे, फिर वहां का पूरा गाना जो है तो आपको सुनना नहीं चाहिए, वो आपको सुनना पड़ेगा, है ना? तो मतलब क्या है इसका, कि हमको यहां बैठकर किसी भी चैनल का पिक्चर देखना है तो आपको टीवी लेकर उस चैनल के ऊपर आपका ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ट्यूनिंग उसको कहते हैं ट्यूनिंग इन। वो ट्यूनिंग इन करेंगे तो उस चैनल का पूरा जो चल रहा है तमाशा सब आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम भी एक टीवी सेट की तरह है, हमारी आत्मा जो है वो भी एक टीवी सेट की तरह है। इसको आप माया को सेटिंग कर देंगे ना तो पूरा व्यभिचार, नशा, जुआ, मांसाहार, झूठ बोलना, खून खराबा, एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग, सब की भावना उत्पन्न हो जाएगी आपके अंदर। इसको भगवान को ट्यून करेंगे आप तो क्या होगा, सारा भक्ति भाव, सत्संग, धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा, कथा, प्रवचन, भगवत सेवा, मूर्ति सेवा, दर्शन, ये सब भावना जागृत हो जाएगी। हमारे गुरुदेव और भी बताते हैं कि हर एक हृदय में दो कुत्ते होते हैं। आपके अंदर है क्या आवाज आ रही है? आवाज नहीं आएगी आपको, लेकिन हवा जरूर अंदर। तो दो कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता है, एक बुरा कुत्ता है। एक अच्छा कुत्ता जो है जो आपको अच्छे रास्ते में लगाएगा, और बुरा कुत्ता जो है वो बुरे रास्ते में लगाएगा। जिस कुत्ते को खाना खिलाएंगे वो कुत्ता दष्ट पुष्ट हो जाएगा और उसकी प्रवृत्ति आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। अगर आपने अच्छे कुत्ते को खाना खिलाया तो अच्छा कुत्ता दष्ट पुष्ट हो जाएगा और बुरा कुत्ता बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आपके अंदर सद्गुण जो है, दया, क्षमा, उत्साह, करुणा, सेवा भावना, ये सब जो अच्छे अच्छे गुण है, स्वच्छता, ज्ञान, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। और बुरे कुत्ते को खाना खिलाएंगे तो दुष्टता, क्रूरता, अपराधी भावना, पापी प्रवृत्ति, मांसाहार, दूसरों को दुख देना, ये सब जो गलत काम है वो सब जागृत हो जाएंगे। तो अगर भगवान की भावना को जागृत करना है तो वो जो ट्यूनिंग है वो कैसे करना है, वो कैसे होता है, उसकी तीन बातें हैं। एक है सिंसियरिटी, मतलब क्या, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता अगर आपके अंदर होगी और आप बहुत ऋणी भावना में होंगे, कृतज्ञ भावना में होंगे, जो भी आपको प्राप्त है दुनिया में आज तक सबके लिए आप धन्यवाद हो, थैंक यू वेरी मच, हम लोग बहुत थैंक यू वेरी मच, ये आपको प्राप्त हो रहा है, भोजन मिल रहा है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, और अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं, यहाँ जाने को मिल रहा है, वहां जाने को मिल रहा है, धन्यवाद है हमारे मन में। धन्यवाद की भावना और प्रामाणिकता की भावना, ये दो भावना से तीसरी भावना जागृत होती है, उसको कहते हैं उत्साह। उत्साह के ऊपर भी एक उत्साह का स्टेज है, उसको कहते हैं ईगरनेस, उसको संस्कृत में कहते हैं लौल्यम, मतलब क्या ईगरनेस का मतलब क्या हिंदी में, हाँ उत्सुकता, ईगरनेस मतलब उत्सुकता, बहुत कैसे बताऊं आपको, यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत तेज इच्छा जन्म में होती है, उत्पन्न हो जाती है, आतुरता, वो मराठी शब्द हो गया ना, कोई बात नहीं, आतुर भी कह सकते हैं। तो ये जो आतुरता है ये सिंसियरिटी और कृतज्ञ भावना का परिणाम है। जब हम सिंसियर होते हैं, हृदय से प्रामाणिक होते हैं, मन हृदय में कोई गलत भावना नहीं होती है, हम लोग चीटिंग नहीं करते हैं, मन में एक बाहर एक ऐसा नहीं होता है, सादगी होती है हृदय की, उसके ऊपर जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं जो प्राप्त है उसके लिए, तो हमारे मन में आतुरता, तीव्र आतुरता उत्पन्न होते हैं, इगरनेस लौल्यम, और ये तीन वस्तु से हमारा हृदय उस सही स्थिति में आता है, उस सही ट्यूनिंग में आता है, तो भगवान की सारी लहरें हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तभी आपके ऊपर है, पंडरपुर में बैठकर अगर आप कुछ और सोच रहे हैं बॉम्बे का और अमेरिका का, तो यहां पर नहीं मिलता है, अमेरिका में कितना अच्छा, तो वो सारी लहरें आपको प्रभावित करेंगी, लेकिन क्या है सब, ये रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, चलो चले जाते हैं यहां से, तो वो भावना आपको प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप प्रामाणिकता और कृतज्ञता और उत्सुकता से यहां पर अपने आप को प्रस्तुत करोगे, सारा पंडरपुर का महात्म्य आपके अंदर प्रवेश करेगा। जो स्पिरिचुअल ग्रेस है उसको कहते हैं आध्यात्मिक कृपा जो है उसको आप टच कर पाएंगे। तो हमारा इस धाम में अभी सेवा करने के बाद में यात्रा करने का उद्देश्य क्या है, वो जो स्पिरिचुअल ग्रेस है उसको हमको प्राप्त करना है, उसको स्पर्श करके उसको अपनाना है, उसको अपने में प्रवेश करना है। और आप बोलेंगे हम तो गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, हम तो क्या, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यही है, पढ़े लिखे होना की जरूरत नहीं है, डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, चपरासी होने की जरूरत नहीं है, सुंदर होने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण गुरु में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, हाँ धनवान होने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। कोई भी अवस्था में आप हो, अगर आपके अंदर प्रामाणिकता, ऋणी भावना, कृतज्ञता और उत्सुकता है, आतुरता है, तो आप यहां पर बैठे हुए पंडरपुर धाम की पूरी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। तो पहले आपको उस तरह से आप तैयार कीजिए, हृदय पर हाथ रख के क्रॉस करके सोच लीजिए, क्या मैं कृतज्ञ हूं जो मुझे प्राप्त हुआ है, पंडरपुर धाम में सेवा मिली है, प्रसाद मिला है, सेवा करने का मौका मिला है, कृपा प्राप्त करने का मौका मिला है, और क्या मैं इसकी वजह से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, सोच लीजिए आप, अगर है तो आपका ट्यूनिंग हो गया है, अगर नहीं है तो आपका होता ना वो आवाज नहीं आ रही, खाली वही आवाज आता है, जब तक ट्यूनिंग ठीक से नहीं होता है ना तब तक ठीक से आवाज नहीं आती। हमने कभी कभी बचपन में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मैच सुनते थे, और ऑस्ट्रेलिया को वो डबल बैंड करके दो बैंड घुमा के उसको ऑस्ट्रेलिया सेंटर पे लगाकर वहां के मैच के कमेंट सुनते थे, तो बीच में फिर शब्द आते थे कुछ, वापस मतलब क्या, ट्यूनिंग सही से नहीं हो रहा है, इसलिए वहां का जो ध्वनि है वो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमको अगर सब तरह से पूरी तरह से कंटिन्यू सुनना है तो हमारा ट्यूनिंग सही होना चाहिए, और वो ट्यूनिंग भगवान का नाम का जप करने से आती है। ये भावना बताई ना प्रामाणिकता और कृतज्ञता, ये भगवान का नाम जप करने से आती है, और भगवान का नाम का जप करने की विधि जो है वो आप मनुष्यों के लिए है, कुत्ता बिल्ली और सर्प और मच्छर के लिए नहीं है, गधा के लिए नहीं है, पंछी के लिए नहीं है, वृक्ष के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। ये सारी मैं कथा सुना रहा हूं, सब लोग आप लोग कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, अगर इस सभा में सब कुत्ते बैठे होते तो ऐसा करते क्या, जिनसे कहां पर खाना मिल रहा है। तो ये कथा जो है कि भगवान का नाम जो है, धाम की तीर्थ यात्रा जो है, ये मनुष्यों के लिए है, इट इज नॉट मेंट फॉर एनिमल्स। आप लोग भाग्यवान जीव कि ऐसे करोड़ों अबजो खरबों अरबों मनुष्य में से आप ऐसे मनुष्य हो जो इस रास्ते पे चल रहे हो, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये। इतने भाग्यवान बोल रहे हो, ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति भगवान की ओर इच्छा प्रकट करता है कि तो जान लो मैं इसमें। ऐसे इच्छा प्रकट करने वाले हजारों में से एक व्यक्ति समझ जाता है कि क्या करना है। ऐसे समझ गए वाले हजार लोगों में से एक व्यक्ति बहुत सिंसियरली और बहुत ईगरली और बहुत आतुरता से भगवान की ओर जाने का प्रयास करता है। और ऐसे भगवान की ओर आतुरता से जाने वाले हजारों में से एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। आपको वो व्यक्ति बनना है? यस और नो?
यस।
हरि बोल,
हरि बोल।
अरे ठंडे दिमाग से हाँ नहीं बोलना, वो सुन रहे हैं, कितने लोगों को हाँ बोलना है, सुन रहे हैं वो आप लोगों को, ठीक है? एक आदमी बोला था, उसको दे देंगे रास्ता, बताएंगे उसको, बाकी ठंडे बैठेगा तो नहीं मिलेगा। तो आपको उस हजारों 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 में से एक व्यक्ति बनना है जो अंतिम समय पर भगवान के पास जाए। तो ये बात थोड़ा समय मैंने इसमें गवाया। ये क्षेत्र जो है यहाँ पर स्वयं भगवान आके विराजमान है। हाँ माता जी, आपको नींद आ रही था, आप खड़े हो जाना। ये क्षेत्र में स्वयं भगवान विराजमान है, बाकी सब जितने भी अवतार हो गए ना, वो भगवान के धाम से आए और अपनी लीला समाप्त करके वापस चले गए, अंतर्धान हो गए। इस जगह पर भगवान आए और यही रह गए। इधर से वृंदावन धाम में भी भगवान आए और फिर अंतर्धान हो गए, लेकिन ये क्षेत्र जो है यहाँ भगवान विराजमान है। पंडित नाथ जी, विठल नाथ जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए आपको बार बार मैं टोकूंगा जगह रहने के लिए, क्योंकि अभी मैं पंडरपुर का महात्म्य बताने जा रहा हूँ कि जिस जगह पर आप बैठे हैं उसका महात्म्य क्या है और आपका यहाँ होने का कितना भाग्य आपका, वो बताने का कोशिश करूंगा मैं। इसके कई नाम है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और पांडवों के महात्म्य के कई, तेनाली, ऐसे बहुत सारे शास्त्र है जिसमें ये पूरा वर्णन दिया गया है। तो इसके कई नाम है, एक नाम है पांडुरंगपुर, एक नाम है पुंडरीकपुर जो उसके भक्त के ऊपर बनाया गया है, एक पंडरी नाम है, एक पंडरपुर नाम है, एक पांडुरंगपल्ली नाम है। हाँ ऐसे कई नाम है इसके। लोअर दंड क्षेत्र है, सूर्य क्षेत्र है, ऐसे कई नाम है इस क्षेत्र के। भीमा नदी के पश्चिम किनारे पर बसा हुआ, ये पूर्व किनारा है, पश्चिम किनारा है। और पंडरपुर क्षेत्र का ऐसा महात्म्य है कि पंडरपुर भगवान के चरण चिन्ह आपको उपलब्ध हैं। आप कोई भी रहेंगे, हाँ मुसलमान होंगे, लेच्छ होंगे, यवन होंगे, पापी होंगे, चांडाल होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, भक्त होंगे, अभक्त होंगे, नास्तिक होंगे, सभी लोगों के लिए पंडरपुर भगवान के चरण चिन्ह अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर जाकर भगवान के चरण को छूकर अपने आप को धन्य कर सकता है। और पता है भगवान के शरीर को स्पर्श करने का या भगवान को देखने का क्या महात्म्य है? भगवान को देखने मात्र से महा महा पातक नष्ट हो जाते हैं और भगवान के दर्शन करने से साक्षात गौलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, वो आपका प्रॉब्लम है, ध्यान में रखना, मैं सुबह बताया आपको। सत्य जो है वो अविश्वास या संशय करने से बदलता नहीं है। मैं पुरुष हूं, समझो मेरा शरीर पुरुष का है, आप बोले आई डोंट बिलीव इट, तो ऐसा कहने से मेरा पुरुष होना खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, सत्य बदलता नहीं है। आम हम कहेंगे कि सूरज डूबता नहीं है, सूरज हमेशा रहता है, पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात हो जाता है, आप बोलेंगे नहीं ये गलत बोल रहे हैं, सूरज का उदय होता है और सूरज नष्ट हो जाता है फिर दोबारा ऊपर आता है। नहीं, हमारा साइंस क्या बताता है कि सूरज वहीं पर है, पृथ्वी घूमती है, सूरज की वजह से हमको दिन रात का अनुभव होता है, ये सत्य है। कुछ लोग कुछ सैकड़ों साल पहले कहते थे कि पृथ्वी सपाट है, तो लोग उसको मानते थे, उसको गैलीलियो को फांसी दिया गया तो क्यों कह रहा था कि पृथ्वी गोल है। आज हम क्या जानते हैं, पृथ्वी गोल है कि सपाट है?
गोल है।
अरे पृथ्वी तभी भी गोली थी तभी सपाट नहीं थी वो, तभी भी गोल थी, आज भी गोल है वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्य जो है वो आपके न मानने से मानने से बदलता नहीं है, वैसे रहता है। हम बोलेंगे ट्रैफिक के रूल को हमको मानते नहीं, हम लोग जाएंगे निकल के, इधर है कोई खड़ा नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, आपसे झूठ बोलते हो, लाइन में से लाइट लगाया है, सब गलत है। जैसे ही आप लाल लाइट क्रॉस करेंगे ना तो पेड़ के पीछे से मामा आएगा बोला लाइसेंस निकालो, तुरंत आपको रसीद काटेगा, आपकी लाइसेंस जमा कर देगा। तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ट्रैफिक के रूल्स जो है सब जगह होते हैं, आपको उसका पालन करना जरूरी है। हम आपको कहेंगे देखो चंद्रभागा तो बहुत थोड़ी सी गहरी नहीं होती है, गंगा जी में जाएंगे ना तो आप अंदर मत जाना, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको प्रवाह खींच लेगा, कितने बड़े स्विमर होंगे ना, आप मर जाएंगे। तो नहीं प्रभु जी, मैं तो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं तो कहाँ से इंग्लिश चैनल में भी स्विमिंग करके आया हूँ। बोला इंग्लिश चैनल स्विमिंग करके आए होंगे तो गंगा जी के लिए आप पास नहीं हुए। गंगा जी बड़े बड़े तैराकों को भी डुबा देती है। जगन्नाथपुर का समुद्र जो है बड़े बड़े तैराकों को डुबा देता है, ये सत्य है। आप मानेंगे तो अच्छा है, बच जाएंगे, नहीं मानेंगे तो समुद्र आपको सुहा कर लेगा, गंगा जी आपको पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि उनका केवल दर्शन मात्र करने से जन्म जन्मांतर के चक्र छूट जाते हैं, ठीक है। इसको भू वैकुंठ कहा गया है, एक और नाम है भू वैकुंठ, क्योंकि यहां पर द्वारका से भगवान आए थे। द्वारका भी स्वयं वैकुंठ का रूप है, एक स्पेशलाइज वैकुंठ है वो। द्वारका, मथुरा, अयोध्या, ये तीन स्पेशलाइज वैकुंठ है, बाकी सब जनरल वैकुंठ है। यहाँ पर त्रिविक्रम संकर्षण से भगवान के विष्णु के स्वरूप अपना दर्शन करते रहते हैं और राज्य कारभार चलाते हैं। स्पेशलाइज जो है तीन है, द्वारका, अयोध्या और मथुरा। उसमें द्वारका नगरी का जो पृथ्वी पर प्रकट हो गया है, वो द्वारका जो है पृथ्वी प्रकट हो गई है जो गुजरात में, वो द्वारका का एक्सटेंशन है पंडरपुर, क्योंकि वहां से भगवान कुंडली को दर्शन देने के लिए यहां पर आए थे, ठीक है। और गंगा और जमुना जहां बहती है, गंगा जहां बहती है और जमुना जहां बहती है, उसके बीच में बड़ा बहुत क्षेत्र है। और ऐसे कहा गया कि गंगा और जमुना के बीच में जितनी जमीन है, जितनी करोड़ों हेक्टर की जमीन है, वो सब पवित्र स्थान है। और उन पवित्र स्थानों में भी कई पवित्र स्थान है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है भू वैकुंठ पंडरपुर, स्कंद पुराण में लिखा गया है। मैंने पहले बता दिया भगवान यहां पर तीन रूप में है, धाम के रूप में है ही, चंद्रभागा के रूप में है और विट्ठल के रूप में। तो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आए थे, उनका अवतार हुआ था, तो वो वनवास में अपने पत्नी के साथ में यहां पर आए थे। तो प्रभु रामचंद्र के भी चरणों का स्पर्श यहां पर हुआ। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, आप लिस्ट बड़ी बहुत लंबी लिस्ट है। इस सभी संतों ने आकर भी यहां पर निवास किया है, भजन किया है, पूजन किया है, साक्षात्कार प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल, अनंत कहानी है लेकिन आपको कुछ कुछ बताएंगे आपका जिज्ञासा और उत्सुकता और आतुरता जागृत करने के लिए। वल्लभाचार्य जी यहां पर आए थे और वो जमुना चंद्रभागा के इस तरफ थे और चंद्रभागा का स्नान करके वहां जाने वाले थे, लेकिन अपना भजन कर रहे थे। अपने भजन में जब वो लीन हो गए तो भक्त लोग आए, महाराज जी चलो हमको ले चलो, उनको भगवान का दर्शन करना है, तो दर्शन नहीं हो भगवान के। तो वल्लभाचार्य ध्यान में सोच रहे थे भगवान का दर्शन करना बाकी रहेगा, हमारा करना है दर्शन। तो उन्होंने ध्यान अपना छोड़ दिया तो कुछ भक्त लोग भाग भाग के आए, उन्होंने बताया महाराज जी वो जमुना चंद्रभागा के पश्चिम तरफ से एक बड़ा काला सा डंडा लेकर एक आदमी जल के ऊपर चल के आ रहे हैं। वल्लभाचार्य ने आंख खोल के देखा तो साक्षात पंडरीनाथ भगवान मंदिर छोड़कर चंद्रभागा के ऊपर चल के आते हुए पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में आए इस किनारे पे, और वल्लभाचार्य को दर्शन दिया उन्होंने। इतनी शक्ति है जगह में, आप मत समझना कि वैसे बैठे हो आराम से तो सामान्य जगह है, कीचड़ भी है, धूल भी है, कुछ गोबर भी पड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये हमको हमारे आंखों से दिखने वाला दृश्य है, ये बाहरी दृश्य है, ये मायावी दृश्य है। जब हम भजन से हमारे हृदय की भक्ति की प्रामाणिक आंख खोलेंगे ना, तो इस धाम का जो असली स्वरूप है वो आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा दर्शन धाम के आंखों से नहीं होते, कहां से होते हैं? कानों से होते हैं। जब हम कान से भगवान के धाम की महिमा सुनते हैं तो साधाम का सही दर्शन वो कान से कर्ण रूप से श्रवण रूप से होता है। फिर वल्लभाचार्य ने यहां पर 7 दिन की भागवत कथा किया, और जहां जहां उन्होंने वल्लभाचार्य ने 7 दिन की कथा किया वो बैठक नाम से प्रसिद्ध हुआ, वल्लभाचार्य की बैठक के रूप में। ऐसे कई सैकड़ों बैठक है भारत भर में सब जगह पर है, एक बैठक यहां पर भी है उनकी। और वो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, विष्णु संप्रदाय के आचार्य हैं, और बाकी सब संप्रदाय के आचार्य भी यहाँ पर आए हुए हैं। 4 संप्रदाय कलयुग प्रधान बताए गए हैं, एक है श्री संप्रदाय जिसके आचार्य रामानुजाचार्य वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, एक है विष्णु संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग के संप्रदाय इस आचार्य वल्लभाचार्य जी, और गौड़िया ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के कौन श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी यहाँ पर स्वयं भगवान है, इस अवतार में उन्होंने जन्म लिया, इस संप्रदाय में वो भी यहाँ पर आए हैं, नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए हैं जो बलराम जी के अवतार है, उसकी कहानी मैं आपको करके भागवत में बताऊंगा। कल सुबह के भागवत सब लोग आना, हम तो मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कहानी बताऊंगा, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया। और कौन सा बचा? निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य भी यहाँ पर आए हुए। ये चार संप्रदाय के चार आचार्य आए, बाकी अनंत संप्रदाय के तुकाराम महाराज, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब वारकरी संप्रदाय से हैं, ये भी सब लोग आए हैं। तो ये सब क्या है, एक तो भगवान यहाँ विराजमान है और सब संतों की पैरों की धूल यहाँ पर उपस्थित है। चंद्रभागा नदी के किनारे में उसको कहते हैं वाड़वन डैनी के डेजर्ट, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, रेगिस्तान। वो रेगिस्तान के हरेक कण जो है, हरेक जो पत्थर है, हरेक कंकड़ जो है, वो ऋषि जन ऋषि मुनियों का स्वरूप है। इसलिए इस नदी किनारे में शौच यानी मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस किनारे के हरेक कण में ऋषि मुनि सब समाये हुए हैं, यहाँ का आश्रय चाहते हैं। तो ये भूमि बहुत पावन भूमि है और इस भूमि में स्वयं आप भी यहाँ पर आए हो और आप लोगों ने यहाँ पर सेवा किया है, आप लोगों ने कोई इंद्रिय भोग तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया है, यहाँ पर इस भूमि में आकर आपने भजन किया है, सेवा किया है भगवान के भक्तों की। तो सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आध्यात्मिक जो इन्वेस्टमेंट है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इन्वेस्टमेंट को
निवेश,
उसका अभिनिवेश आपने किया है इसके अंदर। तो इसमें अनंत आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता ना, वो रेल में कहते ना, कृपा करके रेल के ऊपर से यात्रा मत करो, बताते हैं ना, क्यों बताते हैं, 25,000 वोल्ट की लाइन ऊपर से चल रही है, उसको अगर आपका दुर्भाग्य सद्भाग्य से स्पर्श होगा तो क्या होगा, उस स्पर्श के बाद में आप नहीं रहेंगे, केवल स्पर्श रहेगा और इस इतिहास में लिखा जाएगा कि आप भी गए उसको हाथ लगाते। तो वो करंट वहां उपलब्ध है, जो भी टच करेगा तो करंट का शौक उसको लग जाएगा। वैसे ही वो, तो गलत एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, वैसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति से अभिनिवेशित जो भूमि है पंढरपुर की, इसमें जो आपका स्पर्श होता है ना, तो आपको भी वो आध्यात्मिक चार्ज मिल जाता है, आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा और आपको पता चलेगा। और यहां बैठ के आप भजन करोगे, उनके नाम को पुकारोगे, उनके भक्तों की सेवा करोगे, उनका दर्शन करोगे, तो सोने पे सुहागा, मतलब आपको रेडीमेड प्रॉपर्टी मिल रही है, उसमें आप जानकारी भी रखते हो और वो बटोर भी रहे हो, हाँ, दूध की धारा बह रही है, आपके पास 5 किलो का एक बर्तन है और आप ऐसे खाली खड़े हो, तो आपके बर्तन में 5 किलो दूध आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दूध बह रहा है, तो 5 किलो आप लगाओगे उसके अंदर बर्तन, तो 5 किलो दूध आपके बर्तन में आ जाएगा। वो डिफरेंस है जानकारी होना और नहीं होना में, जानकारी नहीं होगी तो आप आओगे, आपको स्पर्श होगा, आपका उसका लाभ होगा आपको, यदि जानकारी होगी तो आप उस धन को बटोर सकते हैं, और वो बटोरा हुआ धन जो है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और कोल्हापुर में और पंढरपुर में, नागपुर में, आपको सब जगह लाभ होगा उसका। यहाँ पर बटोरा हुआ धन धन जो है आध्यात्मिक धन, वो जीवन भर काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार जो पंढरपुर के भगवान का दर्शन करेगा, वो इस जन्म के अंत में, उसका मृत्यु कहीं भी होगा तो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, आपके साथ में है ना उसका परिणाम, इट विल गो विथ यू वेर एवर यू गो, आप कहीं भी जाएंगे वो धन आप साथ में लेके जाएंगे, दिस इज द बेनिफिट। और पंढरपुर जो है एक योजन चौड़ा लंबा है और आधा योजन चौड़ा है, एक योजन कितना होता है 8 मील का होता है और आधा योजन 4 मील का होता है, 2 कोस का होता है, ठीक है ना, इतना इस क्षेत्र का विस्तार है। और ये विस्तार जो है एक भौगोलिक गणित है, ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन, वस्तुतः ये धाम अनंत है, इसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, स्कंद पुराण में लिखा है और अन्य शास्त्रों में भी लिखा है, ये धाम जो है पंढरपुर, जो पुंडरीकपुर, पंढरीनाथ क्षेत्र, पंढरपुर क्षेत्र, पंढरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये जमीन से वीत भर, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, एक बिलांग, मराठी में कहते हैं एक वीत, इतना जमीन से ऊपर है ये विमान की तरह है, जैसे विमान आकाश में उड़ता है ना, तो उसका भूमि स्पर्श नहीं होता है, तो आकाश में रहता है, आप लोग बैठे हैं सीट में देख रहे हैं खिड़की से बाहर क्या क्या है, जमीन का कोई स्पर्श नहीं उसका विमान का जब वो आकाश में, वैसे परमानेंटली पंढरपुर क्षेत्र जो है जमीन से संपर्क नहीं है उसका, वीत भर ऊपर है, खाली बाहर से आपको अंदर आने का रास्ता दिया है। अभी आप सब लोग विमान पर बैठे हो, विश्वास नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र की बातें स्वयं भगवान की बातें हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। भगवान के ज्ञान के अवतार व्यास देव ने ये शास्त्र को लिखा है। दिव्य व्यास देव भगवान के जो ज्ञान के अवतार है, इसलिए प्रमाण है वाक्य, ब्रह्म वाक्य है ये, इसमें असत्य हो ही नहीं सकता है। और अगर आप इस विमान में बैठे हो तो लाभ किस को आपको लेना, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो भी आप विमान पर बैठे, ठीक है। फिर पद्म पुराण में लिखा है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो धनुष आकार का है, जो आधा योजन चौड़ा और एक योजन लंबा बताया गया ना, वो धनुष के आकार का है। एक जगह पर ऐसा गोल है और एक जगह पर ऐसा लंबा है, ठीक है।
हरे कृष्णा।
फिर आषाढ़ी कार्तिकी में यहाँ पर क्या महत्व है, विशेष रूप से यहाँ पर आषाढ़ी कार्तिकी में क्यों आते हैं, किसी को बताया गया? एनीबडी नोस? नोबडी नोस। तो हाँ, देव शयन एकादशी और देव उठावन एकादशी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान से सुनना आपका कर्तव्य है, ये बहुत रहस्य की बात है। द्वारका से भगवान यहाँ पर, उस कथा में आपको बाद में बताऊंगा, द्वारका से भगवान आए, द्वारका ऐश्वर्य धाम है भगवान का, सब जानते हैं वहां पर भगवान भगवान है। वृंदावन ये माधुर्य धाम है, वहां पर भगवान भगवान है ऐसा कोई जानते नहीं है, सब समझते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, गाय से हमारा गौचारा आदमी है। लेकिन द्वारका में सब जानते हैं कि द्वारकाधीश भगवान है, सब उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं। तो साल भर द्वारका से आए हुए विट्ठल भगवान यहाँ पर ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। और ऐश्वर्य भाव का मतलब क्या है? ऐश्वर्य भाव का मतलब है जो दुखी है उनका निवारण करना, जो दर्दी है उनका दर्द निवारण करना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी करना, जो प्रार्थना करे उनको आशीर्वाद देना, ये ऐश्वर्य भाव है। और जो पापी है उनको पाप से मुक्त कर देना, ये सब ऐश्वर्य के लक्षण है। साल भर में वो उस भावना में रहते हैं। लेकिन आषाढ़ी एकादशी, देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुद्ध एकादशी और कार्तिक शुद्ध एकादशी, इन दो दिन में भगवान ब्रज भाव में रहते हैं, गोपाल भाव में रहते हैं, ब्रज की याद करते रहते हैं, गौचारण के भाव में रहते हैं, मतलब गाय चराने के मूड में रहते हैं और ब्रज के स्मरण में रहते हैं। इसलिए उन दिनों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसे खड़े हैं कमर पे हाथ रखे, लेकिन उन दिनों में वो ऐसे बांसुरी बजाते रहते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा जब आप उसको मन से देखोगे, आत्मा से देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये दिन भगवान बांसुरी बजा रहे हैं मोर पंख धारण करते हुए। इसलिए आषाढ़ के एकादशी के दिन और कार्तिक एकादशी के दिन पंडरपुर के लोग यात्रा करते हैं, वारी करते हैं। वारी का मतलब है येर ज्यादा, जाना आना लगातार, आना जाना यहाँ निरंतर, अरे आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट कर ले राम भजन अर्जेंट, अरे कर ले राम भजन अर्जेंट, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए अर्जेंट है ये। और मैं वारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आने जाने की बात कर रहा हूँ। आना मतलब जन्म लेना, जाना मतलब मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, जन्म लेना माता के गर्भ में फिर मर जाना, पहले उसके बूढ़े हो जाना, बीमार हो जाना, कष्ट प्राप्त करना, दुख प्राप्त करना, फिर मर जाना, फिर पुनरपि जननी जठरा शयनम, फिर माता के गर्भ में प्रवेश करना। ये किसको छूटा है? क्या नहीं छूटा है? ये शंकराचार्य ने कहा है, इससे छूटना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए बताया कि टाइम बहुत कम है और जाना आना लगा हुआ है यहाँ पर परमानेंटली, इसलिए अर्जेंटली उनका नाम देखो। क्या कहा मैंने? आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट कर लो राम भजन अर्जेंट। तो पंडरपुर का एक और महात्म्य है, पंडरपुर जो है वो नाग ब्रह्म कहा गया है। तीन प्रकार के ब्रह्म जगह का नाम, जगह को ब्रह्म कहा गया है, तीन जगह का नाम ब्रह्म का रूप में कहा गया है। एक है पंडरपुर नाद ब्रह्म, एक है तिरुपति कांचन ब्रह्म, यानी पिया रुपया पैसा, यहाँ पर पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, इसलिए कांचन ब्रह्म कहा गया है। और जगन्नाथपुरी में क्या नाम लिखा गया है? अन्न ब्रह्म, यानी कि भोजन 56 भोग। तो नाद ब्रह्म के तीन प्रकार होते हैं, एक होते हैं गीत, एक होता है वाद्य, और एक होता है डांस नृत्य। जब वाद्य नहीं बजेगा और गीत नहीं गाया जाएगा तब तक नृत्य नहीं होगा। तीनों अलग अलग डिपेंड है अपने ऊपर। तो गीत क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या है?
Jai Jai Ram Krishna Hari.
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 Vithoba Mauli.
वाद्य क्या है? करताल और मृदंग. ताल मृदंग वाजती, ताल मृदंग का जय घोष यहाँ पर होते रहता है. और उस पर क्या करते हैं हम लोग? अरे वो हाथ उठाकर नाचते हैं, कदम को यहाँ से वहां मिलाते हैं, स्वामी डांस करते हैं. एक कदम आगे, एक कदम पीछे, दूसरा कदम आगे, पहला कदम पीछे, और हाथ ऊपर करते हैं. क्यों ऊपर करते हैं? अरे कंधा दुख रहा है, नीचे कदम चलेगा क्या? नहीं, जब ऊपर करके नाचते हैं ना तो देवताओं को उसका लाभ होता है. जिस जगह पर आप उठाते हो हाथ, उस लोक के लोगों को यानी देवताओं को इस नाम का कीर्तन का लाभ होता है. और वो लोग भी आतुरता से यहाँ देखते हैं कि वहां पर इतना चांस नहीं उनको करने का, इतना भोग है वहां पर, थोड़ा भक्ति कम होता है वहां पर, थोड़ा कष्ट होगा ना तो भगवान की याद ज्यादा होते रहते हैं. मानते हैं ना आप उस बात को? आपको बहुत आराम मिलेगा. तो आप प्रार्थना करेंगे कि वो प्रार्थना करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या है, कष्ट ही नहीं है. तो कष्ट कम हो जाएगा तो प्रार्थना नहीं होगी. तो देवताओं के लोगों में केवल भोगी भोगी भोग है, थोड़ा प्रार्थना कम हो जाती है, क्योंकि भोग में इतना फंसने के बाद में प्रार्थना याद नहीं आती है. अरे हमारे इंद्रदेव जो बैठे हुए हैं अप्सराओं का नाच देख रहे हैं, वहां से बृहस्पति आते हैं, इतने मग्न है नाच देखने में, गुरु को दंडवत भी नहीं करते है ना. तो गड़बड़ है ना मामला. मतलब तुम लोग को दर्द होता होगा पेट में, सर में दर्द होता होगा, तो डांस का भी उनको आनंद मिलता नहीं था, और तुरंत अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते थे. आनंद ले रहे हैं तो गुरु को भी दुर्लक्ष करते. कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रह जो है शराब के नशे में अंधे हो गए थे. उधर नारद मुनि आते हैं तो ऐसे नंगे रहते हैं, देखते रहते उनको, और सोचते मन में इधर क्यों आया ये, इसका तो जगह आने का, हम मेरा आनंद ले रहे लड़कियों के साथ में, ऐसा विचार मन में आ रहा है उनके. क्योंकि धन का, भोग का, ऐश्वर्य का प्रभाव, नशा उनको आ गया है. इसलिए दर्द होना अच्छा है, दर्द आपको जीवन में बहुत वरदान की तरह है, वो भगवान की याद दिलाता है. भगवान की याद दिलाने से सबका कल्याण होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, गीत जो हरिनाम है, वाद्य मृदंग ताल, और जो भी आप इस्तेमाल करेंगे. पहले जमाने में प्रभुपाद जी जो है ना, वो एक ताटली मतलब एक प्लेट और चमचा लेके भी टिंग 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 बजाते थे, उसको नाच करते थे. जब अमेरिका में मृदंग करताल नहीं पहुंचा था तो इसका मतलब क्या, ताल मृदंग तो है ही, लेकिन जो भी आप लगाएंगे इसके अंदर वो भी वाद्य इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, और उस जब शुरू होगा भगवान का नाम का कीर्तन अगर नाचेंगे तो ये तीन चीज से ये नाग ब्रह्म जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है. और ये तीन चीज जो है ये पंडरपुर का हार्ट है, पंडरपुर का हृदय है, इसकी नींव है, बेसिस है. और ऐसे कहा गया है कि एक बार भी अगर पंडरपुर के अंदर भगवान का नाम लेते हुए वाद्य मृदंग के साथ में अगर कोई कीर्तन करेगा, चांद मिलेगा तो विठोबा के सामने, तो विठोबा सब जगह पर है, चंद्रभागा के रूप में भी है, क्षेत्र के रूप में भी है. यहाँ पर आप एक बार भी कीर्तन करेंगे तो पुनः जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करेंगे. जय जय
माझे
पंढरी से आए, माझे पंढरी से आए,
माझे पंढरी से आए,
जय जय शोभा.
बार भी पंढरपुर का स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वनाश हो जाता है। बॉम्बे में जाकर आपको याद करना है, एक बार भी चंद्रभागा बोलेंगे आप तो भी आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 60,000 बार 60,000 साल तक अगर आप देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करते रहेंगे तो वो एक बार विट्ठल का दर्शन करने के बराबर है। सो पावरफुल। 60,000 साल मतलब क्या, कितनी बार धन देना पड़ेगा आपको, अगर गिनती करो बैठ के। एक बार ये सोच के बोल रहे हैं आपके 60 साल जिएंगे आप, 50 साल जिएंगे तो ज्यादा बार धन देना पड़ेगा। ये हमारी ऐसी जनरल गिनती है, लेकिन भगवान के पास अलग गिनती है। चित्रगुप्त है ना, वो यमराज का दूत जो है ना, वो अपना अलग रिकॉर्ड रखता है। वो किसी को 10 साल लेता है, किसी को 20 साल लेता है, किसी को 25 साल लेता है, किसी को 60 साल देता है, किसी को 80 साल देता है। गारंटी कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये जीवन नश्वर है बहुत, सबको याद रखना है इस बात को। अभी आपकी उम्र कितनी है? 75 ईयर्स। आपकी उम्र कितनी है?
54।
आपकी उम्र कितनी है? 27। आपके 27 में, इनके 54 में, उनके 75 में एक ही इमरजेंसी है, वो है भगवान को प्राप्त करने की। इनको समझना चाहिए, आपको तो बहुत टाइम है, इनका 24 का 75, 50 ईयर का टाइम है अभी। आप बोलेंगे 25 का टाइम है, नो सर, मृत्यु सबके सामने खड़ी है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जो मृत्यु के सामने खड़ा है, जैसे हम सब लोग हैं, वो सब लोग बूढ़े हैं। और हर बूढ़े व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए उनको पुकारना होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
वाचा के द्वारा जो भी हम पाप करते हैं, किसी को बुरा भरा बोल दिया, किसी को बोल दिया कि तुम कुरूप हो, तुम ऐसे ही हो, किसी अच्छी स्त्री को बोला तुम उल्टा हो, ये वाचा के अपराध है। इसको शरीर को स्पर्श नहीं करना पड़ता है, केवल बोलने से। आप बोलेंगे मारो आप चलेगा, लेकिन ऐसा मत बोलो, उनको मारेगा तो अभी 10 मिनट का दुख होगा मुझे, लेकिन बुरा शब्द बोलने से कई साल तक दुख होता है। तो वाचा के जो पाप हैं, वो सारे भगवान के नाम का जप करने से नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम लोग व्यवहार में करते हैं, मैंने आपको गले से पकड़ा, खींचा जोरदार से, आपको गिलाया, और कुछ आपको और कुछ गलत काम किया मैंने आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपका घर चोरी कर दिया, घर फोड़ दिया, घर को आग लगा दिया, हिरण्यकश्यप ने, रावण ने सब किया था, घरों में आग लगा दिया, संतों के यज्ञ में मलमूत्र डाल दिया, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने, उसको आचरण के पाप कहते हैं। आचरण, सिंस परफॉर्म्ड इन बिहेवियर एंड एटिकेट्स, ऐसे कहा गया। ये सारे पाप जो है ये विठोबा के दर्शन से नष्ट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। दोपहर के समय पर सब लोग जग रहे हैं ना, देखो दोपहर का समय है, ये तो 12 बजने को जा रहे हैं। दोपहर के समय में तीनों लोकों में जितने स्थान हैं, जितने पवित्र स्थान हैं, जैसे कि हर एक पवित्र स्थान व्यक्ति है, जैसे त्रिवेणी संगम ये भी व्यक्ति है, गंगा सागर ये भी व्यक्ति है, रंगनाथ क्षेत्र भी व्यक्ति है, पंढरपुर भी धाम की व्यक्ति, पंढरपुर क्षेत्र भगवान है। वैसे तीनों लोक में जितने पवित्र स्थान है, स्वर्ग में, नरक में और पृथ्वी लोक में, ये सभी व्यक्ति रूप बनकर दोपहर के समय पर विट्ठल की पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी का समय जो है, ये सभी धाम तीर्थ जो है भगवान भगवान की सेवा करते हैं। और 33 करोड़ देवता बीच रात में भगवान पंढरपुर की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए। 33 करोड़ सब डेमीगॉड्स, वो बीच रात में जब हम लोग सोते हैं तब वो पंढरपुर भगवान की आराधना करते हैं। किन्नर लोग होते ना, किन्नर यानी कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व या किम पुरुष, ऐसे कई लोग हैं जो वाद्य बजाने में, गाने बजाने में, नृत्य करने में, गीत में, सब में एक्सपर्ट है वो। तो उसमें किन्नर लोग जो गाने में बहुत एक्सपर्ट है, वो किन्नर लोग भगवान के लिए यहाँ पर गाने के लिए आते हैं, भगवान को गाकर ले जाते हैं। और अपने अगर कहीं देखो ऐसा है ना, माफ करना, बुरा मत मानना, मैं ये बता रहा हूं आपको, हम लोग अगर आज जीवित हैं इस शरीर में, इस पृथ्वी पर, तो इसका मतलब यह है कि हमने बहुत सारा पाप किया। अगर हमने पाप नहीं किया होता तो हम भगवान के साथ में होते, हमारे पाप का स्टॉक है, इसलिए हम लोग अभी तक शरीर में रह रहे हैं, इसमें इस मलमूत्र के शरीर में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में कष्ट भोग रहे हैं, गर्मी सर्दी इसका दुख भोग रहे हैं, मच्छर काट रहा है, चूहा काट रहा है, बैक्टीरिया से अंदर रोग हो रहा है, इसका कष्ट भोग रहे हैं, मन के द्वारा प्राप्त हुए कष्ट भोग रहे हैं, मन बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर बनना है लेकिन पोस्ट एक ही है, उम्मीदवार बहुत हैं। ये मन की बीमारी हो गई ना, मन बोलता है मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल एक ही को मिलता है, बहुत लोग अभिलाषा करते हैं उसकी, तो ये मन के रोग है। पर प्राप्त नहीं हो रहा लेकिन प्राप्त करने की इच्छा है हमको। अरे मेरी बीवी इतनी सुंदर नहीं है, उसकी बीवी कितनी सुंदर है, काश वो मेरी बीवी होती तो इतना अच्छा होता, मेरी बीवी सुंदर थी, अभी वो बुढ़ी हो गई है, अब मुझे जवान सुंदर बीवी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मतलब मन की बीमारी ना, ये मन के अंदर ही है, इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं, खाली मन ही बता रहा है आपको कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। मन की बीमारी भोग रहे हैं, शरीर की बीमारी भोग रहे हैं, गर्मी सर्दी तूफान आंधी का कष्ट भोग रहे हैं, हाँ कितना कष्ट है यहाँ पर। तो ये सब नष्ट करने के लिए हम लोग को मनुष्य शरीर का जन्म मिला है। हाँ तो ऐसे कहा गया कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम लोग पाप करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पाप हमने स्टॉप कर दिया है, हमारे हाथ से जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं। आप सांस लेते हो कि लेते हो, सांस लेने में कई बैक्टीरिया मर जाते हैं। आप लोग जब खाना बनाते हैं ना, मतलब हम भी, आप नहीं खाना बनाने के बाद भी कई जंतुओं का हम नाश करते हैं, दूध गर्म करते हैं कई जंतुओं का नाश करते हैं, पैर चलते हैं ना कदम पदम पदम यदम नते शाम, हर पैर के कदम को डालते हुए कई जंतुओं को मार देते हैं। तो ये अनजाने में उन्होंने पाप है, इसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन जानते हुए भी हम लोग पाप कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को काम में काम चोरी कर रहे हैं, 8 घंटा पंचिंग कार्ड कर रहे हैं बराबर से, 4 घंटा आराम करते हैं, बहुत सारे तुरंत काम करने का नाटक करते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के पाप है, कुछ पातक है, कुछ महापातक है, कुछ महामहापातक है। तो जो सारे पातक पाप हम लोग इस धाम के बाहर करते हैं ना, वो सारे पातक जो है वो धाम के अंदर आते ही सब नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना आपका? नहीं प्रभु, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, पहले का रिकॉर्ड साफ हो गया है लेकिन नया रिकॉर्ड बन रहा है ना, नया रिकॉर्ड बन रहा है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग रोज जप करते हैं, क्योंकि एक बार जप करने से पुराने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा करने की जरूरत क्या है, क्योंकि रोज नए पाप पैदा होते ना, सांस तो ले रहे आप, खाना खा रहे हैं, सब पाप 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 इकट्ठा हो रहे हैं, तो हर सुबह हम लोग जप करके उसको नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको अनजाने में जो हो रहे हैं, जो हो ही रहे हैं, वो डाल नहीं सकते उसको, वो नष्ट करने के लिए हम जप करते हैं। जानबूझ के पाप करके दिन भर में कल सुबह जप करके नष्ट करने की सुविधा है, इसलिए जप करेंगे या पाप भी करते रहेंगे, वो गलत पाप प्रवृत्ति है। आमस से ही बलात् पाप बुद्धि, ऐसे भयंकर भावना को भगवान की तरफ से बहुत निश्चिंत माना गया है। लेकिन धाम में आकर जो पाप करते ना, पिछले सुबह आपको मैंने समझाया कि यहां पर आकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए, यहां के पाप जो है वज्रलेप की तरह है, वज्रलेप मतलब कोई तरीका नहीं उसको निकालने का, कोई उपाय नहीं उसको निकालने का, लेकिन वज्रलेप जैसे पाप भी है वो पंडरपुर में भगवान विठ्ठल का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। शाम को जो जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, हृदय से दर्शन करना, हाँ ऐसे यहां वहां देखे नहीं, दिल से दिल उनको भेज देना आप उनके चरणों में, तब जाकर ये सब चमक का दिखाई पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब बाहर से आए हैं और अपना लीला करके चले गए हैं, लेकिन पंडरपुर में भगवान वापस नहीं गए हैं, यहीं पर रहे हैं। कहा बताएंगे, मैंने आपको बताया कि 4 स्तंभ होते पाप के, एक मांसाहार है हत्या कर किसी को खाना, और एक है नशा करना, इस प्रकार का जुआ खेलना, और चौथा व्यभिचार करना, लेकिन और पंच महापातक बताया गया है, एक और भी उसके भयंकर पाप होते हैं, वो है उसमें नशा करना दिया गया है, साधुओं का वध करना, साधुओं को कष्ट देकर उनको वध कर देना, स्त्रियों को बालकों को मारना जो असहाय होते हैं, कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, और अपने वंदनीय स्त्रियों से संबंध करने की इच्छा, जैसे कि इंद्र ने किया ना, इंद्र ने किया, ये चंद्र ने भी किया, ये भयंकर महापातक कहा गया है। लेकिन ये जो और एक है, दूसरों की संपत्ति को चोरना, चोरी का आदमी करता है ना, कभी देखता है कि एक हाथ लगाया तो 5,000 मिल गए, 5 दिन आराम करूंगा आदमी, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो एक चोरी करने से कितने जन्म जन्मांतर के दुखों को और कष्टों को भोगने का प्लानिंग कर रहे हो। आज खाली 5,000 का उसका लाभ हो रहा है, कुछ थोड़ा मजा करेगा, कुछ खाए पिएगा, कुछ आनंद करेगा वो, लेकिन कई जन्म तक का नरकवास की योजना बना रहे हो। हम लोग रास्ता बनाते हैं ना, पंडरपुर रास्ते खराब है तो रास्ता बनाएंगे यहां से वहां जाने के लिए, वो ये चोरी करके यहां से नरक तक रास्ता बनाने की तैयारी करता है। ही स्टार्ट मेकिंग रोड फ्रॉम हियर टू हेल फॉर हिमसेल्फ। तो ये पंच महापातक है, ये पंच महापातक जो है वो पंडरपुर में आने से नष्ट हो जाते हैं अगर आपने किए हैं तो, नहीं किए तो अच्छी बात है आगे मत करना, अगर पीछे कर किए हुए हैं तो आज आप अगर ये पांच में से एक काम कोई करेंगे तो ये पंच महापातक नष्ट हो जाएंगे। वो कौन से हैं? चंद्रभागा में स्नान करेंगे तो, विठ्ठल भगवान का दर्शन करेंगे तो, विठ्ठल भगवान को स्मरण करेंगे तो, पंडरपुर में रहेंगे तो, और पंडरपुर में रहकर नाम संकीर्तन करेंगे तो ये सब पंच महापातक आपके नष्ट हो जाएंगे। इसमें से चार काम तो आपने ऑलरेडी कर दिए, अभी नाम संकीर्तन तो किया, पंडरपुर में आप चार पांच दिन से रह रहे हैं और पंडरपुर के भगवान की याद तो करते होंगे ना आप यहाँ रह के, तो यहाँ पर रहकर और किसी की फिल्म स्टार की याद करते होंगे। चंद्रभागा में स्नान करना बाकी है और विठ्ठल का दर्शन करना बाकी है। इसमें से किसी भी एक का करेंगे ना, एक कार्य करेंगे तो भी आपका काम होता है, लेकिन क्यों ना नदी बह रही है तो अपना सब लोग बोलो, यहाँ पर पुण्य की नदी बह रही है, यहाँ पर सब कुछ भाग्य की नदी बह रही है, कृपा की नदी बह रही है, वर्षा हो रही है वर्षा, तो आप कहेंगे क्या नहीं मैं शांत कर चुका हूँ सुबह, अभी मैं चंद्रमा में शांत क्यों करूंगा, नहीं एक बार दो बार मिलेगा उतना बार करना आप जरूर। तो इसमें से एक कोई कार्य या पांचों कार्य करेंगे तो आपके महापातक भी नष्ट हो जाएंगे। इतना काफी है क्या और सुनने का बोले? 12 बज गए हैं, अभी हम गोपालपुर जाएंगे। कहाँ है हमारे यात्रा के कोऑर्डिनेटर्स? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और फ्रेश होने के बाद में फिर वहां पर एक कथा करेंगे पूरी, कैसे पंडरपुर की लीला क्या है। अभी आपको मैंने पंडरपुर की कथा सुनाने के पहले यहाँ का जो महात्म्य है वो सुनाया, महात्म्य मतलब गौरव को यहाँ इसका क्या लाभ है इसका, इसके बाद पंडरपुर में क्या कथा हुई जो आपको सुनाएंगे, कुछ कथा मैंने सुनाई अभी आपको, लेकिन और कथाएं भी सुनाएंगे, थोड़ा कीर्तन करके चले जाएंगे।
जी मैंने गोपालपुर का प्रसाद का इंतजाम इसलिए किया था, गोपालपुर प्रसाद बने का बड़ा महात्म्य है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ तो जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो कथा शुरू करेंगे, तो आप लेके आना उसको।
मैनेजमेंट की तरफ से एक सुविधा की योजना होती है, लेकिन भगवान के किताब के अनुसार दूसरी योजना होती है, वो सफल होनी चाहिए। तो क्या डिस्कशन हुआ हमारा गुप्त रूप में? वो डिस्कशन ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि अभी प्रसाद हमको पतरा शहर में जाके पाना है, हमने कहा नहीं हमको प्रसाद जाके गोपालपुर में पाना है, क्योंकि गोपालपुर में प्रसाद पाने का बहुत महत्व है, उसकी कथा आपको गोपालपुर में बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि गोपालपुर में इतना कष्ट करके प्रसाद लाने की क्या जरूरत थी। इसलिए हम लोग अभी सब लोग मिलकर गोपालपुर जाएंगे जो केवल 3-4 किलोमीटर दूर है, जब बैठ के कथा शुरू करेंगे तब बसें जाएंगे और प्रसाद लेकर वहां पर आएंगे, फिर हम सब लोग वहां पर बैठकर प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
जय जय राम कृष्ण हरे,
जय राम कृष्ण
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 जय जय राम कृष्ण हरे,
जय राम कृष्ण हरे।
Yeah.